सभी का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और अभी अगले दो हफ्ते में जो है ये आखिरी बार ये प्रसंग होगा। इसके बाद जो है कल से बलराम कथा, उसके बाद जन्माष्टमी आ जाएगी, तो फिर भगवान श्री कृष्ण पे जो है कथा, फिर प्रभुपाद अपीयरेंस होगा। इसके बाद जो है मौका मिलेगा समाओ जो श्लोक बोर्ड पे है उसके बाद दो श्लोक और हैं तो ये कैंटो ही ख़त्म हो जाएगा। बट इसके लिए आपको जन्माष्टमी के बाद तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः। तो जैसा कि काफ़ी दिनों से ये प्रसंग चल रहा है और अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 8वीं स्कंद का 24वां अध्याय, अध्याय का शीर्षक है भगवान का मत्स्य अवतार। श्लोक में भी तात्पर्य है, उसके बाद का श्लोक उसका खत्म हो जाएगा पूरा अध्याय। तो अभी तक जो है हम
त्वं तं अहं देवं वरं वरेण्यं त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानम् अभीष्टसिद्धि तथापि लोको न भवन्तम् अन्धधी जानाति छन्दम् हृदि बद्धकामः त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो यात्मा गुरु ज्ञानम अभिष्ट विद्धि तथापि लोको न भवन्तम् अन्धधी जानाति शन्तम् हृदि बद्धकामः त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानम् अभीष्टसिद्धि तथापि लोको न भवन्तम् अन्धधी जानाति सन्तम् हृदि बद्धकामः।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद के शब्दार्थ हमारे पीछे धर रहे हैं। त्वं तुम हे भगवान सर्वलोकस्य सारे लोकों एवं उनके निवासियों के सुरे शुभचिंतक प्रिय अत्यंत प्यारे ईश्वरः परम नियंता ही भी आत्मा परमात्मा गुरु ज्ञानं परम ज्ञान अभीष्ट सिद्धि समस्त इच्छाओं की पूर्ति तथापि फिर भी लोकः लोक ना नहीं भवन्तम् आपको अंधधी अंधी बुद्धि के कारण जानाति जान सकता है संतम स्थित हृदि उसके हृदय में बद्ध कामः भौतिक कामिच्छाओं से मोहित होने के कारण। धन्यवाद। अब अनुवाद सुनिए। हे प्रभु आप सबों के परम हितैषी तथा प्रियतम मित्र नियंता परमात्मा परम उपदेशक परम ज्ञान के दाता तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। यद्यपि आप हृदय में रहते हैं किंतु हृदय में बसी काम इच्छाओं के कारण मूर्ख आपको समझ नहीं पाता। आप फिर सुनिए, ध्यान से सुनिए, बड़ा गहरा दाता है इसके लिए। यहां पर मूर्खता का कारण बताया गया है। क्योंकि इस जगत में बद्ध जीव भौतिकवादी कामिच्छाओं से पूर्ण रहता है, अतएव वह भगवान को नहीं समझ पाते। यद्यपि भगवान सबों के हृदय में वास करने वाले हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयाभिनिदिष्टः, इसी मूर्खता के कारण वह भगवान से उपदेश नहीं ग्रहण कर पाता। यद्यपि भगवान प्रत्येक व्यक्ति को बाहर और भीतर से उपदेश देने के लिए उद्यत रहते हैं। भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। दूसरे शब्दों में भगवान भक्ति के विषय में उपदेश दे सकते हैं जिससे मनुष्य भगवत धाम लौट सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश लोग ऐसी भक्ति नहीं अपनाते। भगवान सबों के हृदय में स्थित होकर मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का पूरा पूरा उपदेश दे सकते हैं, किंतु मनुष्य काम इच्छाओं के कारण भौतिकवादी कार्यों में लगा रहता है और भगवान की सेवा नहीं करता। अतः वह भगवान के उपदेशों का महत्व से वंचित रह जाता है। ज्ञान के बल पर मनुष्य यह समझ सकता है कि वह शरीर न होकर आत्मा है, किंतु जब तक वह भक्ति में नहीं लगता तब तक जीवन का असली प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। जीवन का असली प्रयोजन भगवत धाम वापस जाकर भगवान के साथ रहना, उनके साथ नाचना तथा खाना पीना है। ये सब आनंद के विविध साधन हैं। आध्यात्मिक विविधताओं में आध्यात्मिक आनंद। भले ही कोई ज्ञान के बल पर ब्रह्मभूत पद को क्यों न पाले तथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को क्यों न समझ ले, किंतु भगवान को समझे बिना वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकता। इसका संकेत अभिष्ट सिद्धि शब्द में मिलता है। भगवान की भक्ति में लगने पर ही जीवन के चरम लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, तभी भगवान मनुष्य को सही उपदेश दे सकेंगे कि भगवत धाम किस तरह वापस जाया जाए। एक ही पैराग्राफ है तो, मगर इसके अंदर ही वैसे ये अध्याय तो देखिए मत्सवतार पे है, मगर ये 48 से लेके अब जब तक चलेगा ये, अच्छा 63 है, 61 है, हाँ 61 तो 48 से शुरू हुआ है 61 तक। कॉन्सेप्ट जो है इसका अभी जो मतलब प्रभुपाद फोकस भी कर रहे हैं, श्लोकों का एक जो कॉन्सेप्ट है वो है, मैं आपको किताब निकल पढ़ के बताना ज़रूरी है, मुझे लगा कि ताकि आप समझ सके क्या हो क्या। 48 श्लोक से जब शुरू हुआ था तभी भी इसका कॉन्सेप्ट था श्री कृष्ण परम गुरु, फिर आगे चलते गए भौतिकवादी गुरुओं द्वारा मूर्ख शिष्यों का ठगा जाना, जो कल वैकुंठ रसप्रभु ने कवर किया, और फिर आगे है प्रामाणिक गुरु की खोज। तो कॉमन फैक्टर जो इसके अंदर निकल के आ रहे तीनों में जो एक चीज जो निकल के आ रही है, तो जो गुरु का कंसेप्ट है यही 12-13 श्लोक जो है, और इससे कैंटो खत्म हो रहा है, तो फोकस यही है। और जब 48वां श्लोक था उसमें भी परमो परम ऐसे गुरु और गुरु ऐसे कुछ का निकलता है ना, लिखा भी हाँ गुरु और गुरु, तो आप 48वें श्लोक में जाओगे तो उसमें वर्ड मिलेगा, वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो अब जो है मैं कन्फ्यूजन क्रिएट करता हूँ या मैंने नहीं किया हुआ, सच बताऊँ तो कई बार ये टॉपिक जैसे याद है, अब कल से शुरू होगा देखना, कल बलराम जयंती का कथा शुरू होगी, शुरू होते ही जो भी वक्ता बैठेगा वो बगैर ये बोले कि बलराम जी क्या है हमारे, बस बात ही खत्म नहीं, वहीं से शुरू होगी कहानी, आदि गुरु ठीक हो गया। अब उसके एक महीने बाद फिर एक और त्यौहार आएगा, एक महीने बाद 15 दिन बाद नहीं, वो कौन सा त्यौहार होगा, राधामष्टमी। अब राधा रानी के लिए जो बैठेगा वो कहाँ से शुरू होगा, राधा रानी क्या लगती है हमारी है, आपका क्या अलानी शक्ति, आप अलानी शक्ति जी आपको हाँ आदि गुरु। अब या तो पहले ये तय कर ले आदि गुरु है कौन है आप
ये भी आदि गुरु है, ये अभी आदि गुरु है। अब यहाँ से जो है 48 में ये गुरु और गुरु, ये सत्यव्रत मुनि अमन आपके भाई वैश्व मनु जो है, तो फिर एनी तो ये भी यही कुछ अभी करेंगे। जय श्री श्री राधा राधे कृष्ण बलराम गोविंदा जगन्नाथ भक्त सुब्रह्मण्य। तो आदि गुरु आप में से कई लोगों ने सुना होगा, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मतलब ऐसा लग रहा है जहाँ सर घुमाओ मुंडी घुमाओ यहाँ पे सारे गुरु ही गुरु हैं, है ना। तो मतलब मेरा जो छोटा सा तजुर्बा है, यूजुअली क्या होता है जब एक किसी का आविर्भाव होता है कुछ होता है तो एक पे फोकस होता है, तो वो फोकस होता है वो चला जाता है, फिर अगला आता है उस पर फोकस होता है। तो कई बार क्या है कि पूरी टोटैलिटी में हार्मोनाइज नहीं होता, तो बस जिसको जो पसंद आता है या जो जहाँ पर आता है वो टिक जाता है जाके कि जी ये आदि गुरु हैं, ये आदि। अब लड़ने आपस में सारे आदि गुरु, कौन आदि गुरु है, अब कृष्णा आदि गुरु है, कौन आदि गुरु है। तो इस ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कहाँ से शुरू होती है। एक तो ठीक है अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करना भी अपने आप में होता है, क्योंकि टॉपिक जो है जब ये आदि गुरु वर्ड बोला जाता है तो वो पर्सनैलिटी की तरफ झुकाव चला जाता है, सारा व्यक्ति के ऊपर सारा फोकस चला जाता है कि बंदे की बात नहीं हो रही वहाँ, वहाँ पर दरअसल तत्व की बात हो रही है, प्रिंसिपल की बात हो रही है। पर्सनैलिटीज जो है वो अनलिमिटेड होंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप कौन आदि गुरु है कौन, आई मीन कॉन्सेप्ट जो है। सो समझाने के लिए चीज़, अब ये आदि गुरु है, अब आप कृष्ण लीला में चले जाएंगे मैं 20 गुरु गिना दूंगा कृष्ण के, ललिता उनकी गुरु है, विशाखा गुरु है, पूर्णमासी गुरु है, चलते चलो सांदीपनी मुरी गुरु है, तो सबको पता है अब कितने गुरु हैं भैया, क्या चक्कर कह रहे हो। तो पर्सनैलिटीज बहुत सारी, अब अगर वो कृष्ण के गुरु हैं जो कि अपने आप को आदि गुरु कह रहे हैं, उसके बाद सारी कहानी शुरू होती है, तो फिर उनको कहाँ लेके जाओगे, आदि आदि गुरु। कंसेप्ट जो है एक्चुअली इसका, ये आदि गुरु या गुरु ये एक तत्व की बात हो रही है, यानी कि जैसे आप ब्रह्म संहिता में सुनते अद्वैतम अच्युतम, ये वन की बात हो रही है, अगली लाइन इसका कॉन्ट्रडिक्शन है, अनादि अनंत रूपम, एक तरफ हो जाओ या एक है या अनेक है, नहीं दोनों साथ है, दैट इज कॉल्ड अचिंत भेदाभेद तत्व। यहाँ पर जाके वो बात जरूरी हो जाती है समझना। तो व्यक्ति एक से एक पोजीशन को होल्ड करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, मगर जब आप उसको तत्व की दृष्टि से, प्रिंसिपल की दृष्टि से देखते हैं, एलिमेंट की दृष्टि से देखते हैं, तो वो एलिमेंट एक होते हैं। सो इसको लेके मतलब कंफ्यूज ना हो आगे कि आदि गुरु कौन है, ये सारे इकट्ठे आदि गुरु हो सकते हैं एंड येट एक दूसरे की पोजीशन को कोई धक्का मार कर हटाता नहीं, कि जी नहीं आदि गुरु के गद्दी पे मैं बैठूंगा, उन्हें नहीं मैं बैठूंगी, वो कहते नहीं मैं बैठूंगा, तो इस तरह नहीं है ऐसा। तो सारे आदि गुरु की गद्दी बहुत बड़ी है क्योंकि वो तत्व की गद्दी है, तो उस पर सारे बैठ सकते हैं। अखंड गुरु तत्व कंसेप्ट जो कि हमारे संप्रदाय में जी गोस्वामी ने इसको मतलब इसका ये नाम दिया, ये इस प्रॉब्लम को हार्मोनाइज करती है, तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो क्योंकि यही होता है फिर वो आगे जाके कई तरह के कन्फ्यूजन शुरू करता है कि जी बलराम जी आदि गुरु हैं किन के लिए, जो फलाने फलाने रस में हैं, और वो कौन से आराधने किसी गुरु फलाने फलाने रस में हैं, तो ये कोई बटा नहीं हुआ इस तरीके से कि एक बंदा किसी रस में है तो वो दूसरे से इंस्पिरेशन नहीं ले सकता, उसे टीचिंग नहीं ले सकता, या वो उसका वहाँ पर कोई एक्सेस नहीं है, सबका सभी जगहों पर एक्सेस है। ये कह सकते हैं किसी का किसी जगह पर ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को एलोकेट कर दिया जाता है, या किसी चीज़ को किसी जगह पर ठीक है ये आपके लिए ज़्यादा, इससे आप ज़्यादा आइडेंटिफाई करेंगे, इससे आपकी पहचान इससे ज़्यादा की जाएगी। तो उस तरीके से आदि गुरु का कंसेप्ट जो है लागू होता है। सो बिकॉज ये चल ही सारा ये रहा था और मत्स्य अवतार का पूरा कंसेप्ट जैसे इस, तो मुझे लगा कि ये एक इशू है जिसमें लेके कई बार एपरेंटली कन्फ्यूजन होती है। अब क्योंकि क्या होता है कि जो या तो नया होता है यहाँ पर, या वो आधा अधूरा सुना होता है, या यहाँ से भी कई बार आधा अधूरा एक पार्ट पे बात करी जा रही है तो फिर दूसरे बात पर उसी वक्त बात नहीं हुई है, सो देन तो ये एक तरीके का परसेप्शन बन जाता है, और फिर उसके बाद इस परसेप्शन के बेस पे मेरा थोड़ा तजुर्बा है, कई बार लोग जियालागिरी भी शुरू कर देते हैं, हम किन के हुए हैं, हम बलराम जी के ही हुए हैं, हम किन के हैं, हम राधा रानी के ही हुए हैं, तो इस पे ये कन्फ्यूजन आगे जाके और बढ़ जाती है कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा रस क्या है, कि हम बलराम जी के लगे हुए हैं, हम राधा रानी के लगे हुए हैं, और वो फिर होता भी ऐसे है, आप पे बलराम जी कृपा करें, आप पे राधा रानी कृपा करें, ना बलराम जी ने अकेले कृपा करनी होती है, ना राधा रानी ने अकेले कृपा करनी होती, आप भगवान कृष्ण को इक्वेशन से नहीं उठा सकते, ये उल्टी तरफ से भी ऐसी चलती है। जैसे आप ये कहते हैं कि बलराम की कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिलते, तो वैसे ही कृष्ण की कृपा बिना आप बलराम को अकेले अपने जेब में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उनके सर्वेंट पहले हैं, आपके बहुत बाद में आते हैं, अब आपका रिश्ता उनके साथ। उसी तरह मतलब कई बार ये देखा, आपका क्या ख्याल, क्या क्या एक्सपीरियंस होता है ऐसा, कई बार बंदा है कि एक ही तरफ भागने लग जाता है, देखा है ऐसा कई बार डिवोटीज थोड़े पागलपन का शिकार होते हैं, या और अच्छा अभी तो मैंने नित्यानंद प्रभु को नहीं लाया किसी का बीच में, वो भी आदि गुरु है, वहाँ उस टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा प्रिंसिपल की बात हो रही है, मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो सकते हैं, और मैनिफेस्टेशन अलग अलग होंगे तो उनमें वैरायटी भी होगी, स्पेशलिटी भी होगी, किसी की ये खासियत है, किसी की ये खासियत है, मगर प्रिंसिपल के रूप में जो है वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर नहीं तो फिर ये ऐसे शुरू होता है, हम नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, अब महाप्रभु कहाँ लेके छोड़ोगे बीच में, ठीक है। तो वो चीज़ें तो नौसिखिए लेवल पर कई बार ये चीज़ें इस तरीके से चली जाती हैं, आप अलग नहीं कर सकते दोनों में से किसी को भी, ना इधर से ना इधर से। तो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग, चूँकि पूरा सब्जेक्ट ही इस पे था, तो अब यहाँ पर जैसे आप देखें कि शुरुआत में जो है एक मिनट, हाँ ये रहा ना, सो जैसे प्रभुपाद ने शुरू ही किया ऐसे कि मूर्खता का कारण बताया गया, आदमी मूर्ख क्यों होता है, अमूर्ख या तो समझ ले, तो मूर्ख की डेफिनेशन क्या है, किस लिहाज से इंसान को मूर्ख समझा जाता है, कि भाई ये अगेन प्लेटफॉर्म्स अलग अलग होते हैं, आमतौर पर मूर्ख का मतलब है जिसके अंदर दिमाग नहीं है, सो मगर यहाँ पर मूर्ख का मतलब उसे कहा जा रहा है जो भगवान को शरण नहीं लेता, दिमाग है चाहे नहीं है। अलग अलग जगह पे एक 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 शब्द की एक लफ्ज़ की परिभाषा बदल जाती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है मैं कमेंट्री में बेसिकली कहते हैं, मतलब एक डायलॉग टाइप का उसके अंदर है, तो उसमें भी इस तरीके से कि भगवान जो है वो भी मतलब शोक कर रहे हैं, इसका शोक कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं कि जो ये लोग जो हैं ये मुझे क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं ओरिजिनल गुरु हूँ, मैं आदि गुरु हूँ, तो सारे मेरे बाद आते हैं, ठीक है। तो फिर तो अब मैं अगर ओरिजिनल गुरु हूँ तो अब मेरे को सरेंडर क्यों नहीं करते, अभी हम वहाँ पर नहीं जा रहे कि भगवान को सरेंडर करने का मतलब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव को सरेंडर करना, रिप्रेजेंटेटिव का आदमी सरेंडर इसलिए करता है कि वो ओरिजिनल को सरेंडर कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव की बुनियाद और रिप्रेजेंटेटिव का मकसद दोनों ओरिजिन पर टिका हुआ, कई बार ये भी रह जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, कॉन्सेप्ट्स फटाफट आते जाते हैं, और हमारा शायद या तो ग्रैस करने की स्पीड कम होती है, या ग्रैस करने की स्पीड लिमिटेड होती है, या बहुत जल्दी मतलब बंद कर देते हैं, पता नहीं, इनमें से कुछ भी हो सकता है कि बस इतना ही ठीक है। तो शुरू में जब बंदा, आप देखिएगा आपका तजुर्बा, आप देखिए कैसा शुरू में जो लोग आते हैं, नए नए हम में से सारे जब शुरू में आते हैं वो इधर देखते हैं, वो यहाँ खड़े होते हैं और बाकी किसी को नहीं पहचानते, तो हमारा इशू ये होता है उस वक्त कि नहीं भैया, भक्तों के थ्रू आप जाओगे, आप भगवान डायरेक्ट नहीं मिलते, यूँ हैं। उसके दो तीन साल, चार साल, पाँच साल मैक्सिमम के अंदर अंदर वो कोई ना कोई भक्त अगर जुड़ गया है, अब वो उसकी प्राइमरी फोकस होता है, इतना हो जाता है कई बार कि वो भूल जाता है कि उसके पीछे, पता नहीं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, पर कई बार मैंने ऐसा देखा कि वो ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे ये जो बंदा है जिसके मैं आज जो है इतना मैं इतना उनसे जो है आकर्षित हुआ हूँ, या मैं उनसे जुड़ गया हूँ, इसके पीछे का मकसद कुछ और था, इसके पीछे का मेरा मकसद जो है अब दरअसल भगवान को सरेंडर करना था, दरअसल भगवान की खुशी थी, दरअसल भगवान की सेवा थी, दरअसल भगवान के साथ एक संबंध था, मतलब दरअसल भगवान थे। तो वो कई बार फिर वो चीज़ मैंने देखा कि वो पीछे हो जाती। सो ये आगे पीछे का मामला नहीं है, और ये सवाल भी कई बार उठता है, वो जज्बाती तौर पर शायरियाँ भी हो जाती है, काकू लागू पाए ये और वो मिलाए भुलाए कई सारी चीज़ें होती हैं, मैं उन चक्कर में नहीं पढ़ रहा, मैं उसके चक्कर में पड़े बगैर बात कर रहा हूँ। ये क्या कहते हैं इसको, ये लॉन्गिट्यूड है बेसिकली, यानी ये प्लेन है, इस प्लेन में ये प्लेन फैलेगा, ये यू नहीं है, लैटिट्यूड में नहीं बढ़ता है, ये लॉन्गिट्यूड में बढ़ता है। एक बंदा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तीसरा आया, ऐसे है, ये यू नहीं है। अब इसको आगे रखना है, अब इसको पीछे रखना है, ये क्या करना है, वाई, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट ए तत्व, ये तत्व की बात हो रही है कि जब आप सबमिट करते हैं तो तत्व के बेसिस पे सबमिट करते हैं। ओरिजिनली टेक कृष्णा एज गुरु, इसी वजह से गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हैं जितने भी बाकी हैं, चाहे वो बलराम जी हैं, राधा रानी जी हैं, और सो एंड सो फॉर्थ। तो ये जो बढ़ना चाहिए वो इधर बढ़ने की जरूरत है, वो शायद यूं हो जाता है। अब इसमें इधर कौन पहले आएगा, इधर कौन बाद में आएगा, इसके पीछे नीचे रखूँ, किसको आगे रखूँ, पीछे रखूँ, ये साथ वाला इशू है। इसलिए आप देखेंगे जो गुरु परंपरा का जो सिस्टम है वो ऐसे रखा जाता है, ऑल्दो आप समझ सकते हैं वो समझाने के लिए कि इससे पहले ये आए, पहले ये सिर्फ यहीं तक के लिए। जब आप भागवत गीता में वो पढ़ते हैं, लिस्ट पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा देखते हैं, तो वो सिर्फ ये बताने के लिए पहले आया था बाद में आया था। अब आप बोलोगे कि इनमें से कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है, तो जो ज़्यादा ताकतवर है उसको सर पे बिठा दो। अब बात वो यूं है, तो आप गुरु तत्व को जो है इस तरीके से लेते, ये और ये। सो इसलिए उस वक्त कृष्णा कई बार जो है, मेरा तजुर्बा है, बातचीत करने से पता लगता है, भक्तों से बातचीत करो तो वो जिक्र ही नहीं आता भगवान का, मेरे उन्होंने यूँ बोला है, मेरे शिक्षा गुरु ने यूँ बोला है, मेरे भक्ति विषय लीडर ने यूँ बोला है, मेरे मेंटर ने यूँ बोला है, मेरे काउंसलर ने यूँ बोला है, और भाई भगवान ने भी कुछ बोला होगा, वो कहाँ है वो, क्योंकि अब वो अब इसके इसको आगे लगाया हुआ। तो ये तो विथ टाइम ये चीज़ों को जो है मैच्योरिटी के साथ, सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ, साथ में देखने की ज़रूरत है। ये साथ है, कोई आगे पीछे ऊपर नीचे वाला सिस्टम उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम शायद कई बार समझते हैं, आई डोंट नो। तो ये क्योंकि अब जैसे देखिए यहाँ पर एक क्योंकि अगर समझने वाली बात है कि क्या समझना है, कैसे समझना है, तो ये तो मैं अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा ना, तो और ज़्यादा ये तो ज्ञान ऐसे लिखा हुआ है ना, तो शायद इतना अंग्रेज़ी में ये टकरेगा बहुत। बहुत जनरली हम लोग मेंटल स्पेकुलेशन को बहुत रगेदते हैं, अभी मेंटल स्पेकुलेशन की दौड़ बता रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम भाई, मैं इसलिए अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ भाई, यहाँ पर हिंदी में ये लिखा हुआ है ज्ञान के बल पर, अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो ये और, बाई मेंटल स्पेकुलेशन वन कैन, कैनॉट नहीं है, कैन अंडरस्टैंड दैट वन इज नॉट द बॉडी बट द स्पिरिट। तो ये शरीर आत्मा का भेद के लिए शास्त्र तो बहुत पावरफुल एलिमेंट है, मेंटल स्पेकुलेशन यानी कि ज्ञान का जो धरातल, यही काफ़ी है ये समझाने के लिए। तो जो एक स्ट्रगल सा होता है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, यही नहीं समझ आया, आया नहीं आया, क्या आया अभी तक प्रभु जी आगे नहीं, ये तो इसके लिए तो मेंटल स्पेकुलेशन भी काफ़ी है, ये भी ठीक से आप इस्तेमाल कर लें तो आप ये बात समझ सकते हैं। मगर इशू ये नहीं है ये समझना कि, मतलब है बट अल्टीमेट नहीं है, ये एक वही वो मील का एक पत्थर है, यहाँ पर गाड़ी रुक नहीं जाती कि मेरे को ये बात समझ आ गई है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और मेंटल स्पेकुलेशन से पॉसिबल हूँ। और इसीलिए होता है, जैसे अगर आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का अगर ऐसा तजुर्बा हो, कोई 7 डे सेशन अटेंड करने का तजुर्बा हो, हमारे यहाँ पे 4 डे सेशन अटेंड करने का तजुर्बा हो, तो वहाँ पर जो हमारे शुरुआती जब हम प्रीच करते हैं, हम कोई भागवत गीता, कोई आचार्य, कुछ किसी को बीच में नहीं लगता, वजह ही है, इसके लिए तो इतना ही काफी है। इस तरह के फॉर्मूले कई लोगों ने, मतलब ओरिजिनली जीव गोस्वामी ने इस्तेमाल किया, आप तत्व संदर्भ पढ़ेंगे शुरू में बात ही ऐसे शुरू होती, अभी कोई भगवान भगवान बीच में नहीं लाए, पहले इंसान से शुरू करते हैं। तो इंसान की अपनी दौड़ यहाँ तक है कि अगर वो अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो ये समझ सकता है कि वो शरीर आत्मा में भेद क्या, इसके लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत है। मगर बात ये समझने तक के लिए नहीं हो रही है, बात कुछ और हो रही है। जो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया अभीष्ट सिद्धि, अभीष्ट का मतलब होता है टारगेट, लक्ष्य, सिद्धि, उसको प्राप्त करना। तो वो क्या है, जैसे आप प्रभुपाद बता रहे हैं असली प्रयोजन, प्रभुपाद जीवन का असली प्रयोजन भगवत धाम वापस जाकर भगवान के साथ रह, बिल्कुल ही ब्लंट भगवान के साथ रहना, उनके साथ नाचना तथा खाना पीना है। चलो ये है, तो इसके लिए फिर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर आपको सिर्फ इतना समझना है आप शरीर नहीं आत्मा है, तो आपको कोई शास्त्रों की खास जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस इनफ। मगर आपको भगवत धाम वापस जाना है, भगवान के साथ खाना पीना है, नाचना है और जो भी काम काज बताते हैं रहना है, तो फिर इसके लिए ये प्रोसेस है। तो कई बार प्रोसेस को भी बहुत, मतलब अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं उसका, जैसे होता है ना कि 500 रुपये के नोट से 50 पैसे का काम लेना, ये प्रोसेस शरीर आत्मा का भेद बताने के लिए इतना बड़ा लंबे चौड़े प्रोसेस की जरूरत ही नहीं। ये प्रोसेस भगवत धाम ले जाके भगवान के साथ रहना, खाना पीना, नाचना कूदना और जो कुछ भी कारोबार वहाँ होता है, जो कि जिसका जिक्र ये श्लोक में, अगर आप देखें श्लोक को ध्यान से तो आप इस श्लोक के अंदर ये शब्द हैं सारे ही रसों के बारे में जिक्र कर देते हैं। जैसे सुरित सख्य आ गया, फ्रेंडशिप ठीक हो गया, अच्छा फिर आप भगवान जो है परम नियंता है इसके अंदर, जैसे हाँ ईश्वर नियंता हो गए। अब नियंता जो होगा, तो जो नियंता होगा उसके उसके अगेंस्ट हम क्या होंगे, दास, दास्य। चलो जी ठीक हो गया, अच्छा अब आत्मा परमात्मा, परमात्मा का रस जनरली किस उसमें रस में शांत, चलो तीन हो गए ठीक है, गिनते रहना ठीक है। अब भगवान जो है वो गुरु की तरह भी जो है आपको गुरु ज्ञान ठीक है, गुरु की तरह भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ सीनियर, वो क्या हुआ वात्सल्य। चलो बाकी क्या रह गया, हाँ माधुरी रह गया, तो रहा ना अभीष्ट सिद्धि। अभीष्ट सिद्धि की डेफिनेशन यहाँ प्रभात क्या इसके इसके इसमें क्या बता रहे हैं चीज, कि भगवान के साथ रहना, नाचना, खाना पीना। अब ये सारे कारोबार तो आप गुरु के साथ नहीं करते, पर आप माधुर्य में कारोबार कर सकते हैं। सो एक ही श्लोक में पांच रस भी निपटा दिए। सो क्यों, क्योंकि ये इसके लिए फिर आप आगे आइए, इसके लिए तो मेंटल स्पेकुलेशन काफी नहीं है। तो ये अब आखिरी चीज जो मेरे को चौकी, इनफैक्ट किसी से बात हो रही थी तो उससे निकल के आए थे कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये मत्स्य अवतार जो है जब आए, ये चैप्टर वही है, कहानी कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले क्या हुआ, आए क्यों, कौन बताया, जो लोग रेगुलर बैठते हैं आज तक क्या हुआ था, हाँ नहीं वो तो दूसरा है, वो तो दूसरा एपिसोड है, पहला एपिसोड किया था, हाँ हाय ग्रीव ने क्या किया था, हाँ क्या क्या किया था तुमने, ठीक है ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिया, अच्छा चलो सारे बैठे हैं, मैं मासूमाना से सवाल पूछता हूँ ठीक है। ये वेद जो है शुरू में ब्रह्मा जी के टाइम, शुरू में, शुरू की बात हो रही ठीक है, ये लिखे हुए थे कि ये मौखिक थे, ओरल थे कि रिटन थे, तो भैया जो चीज़ ओरल है तो चुरा कैसे सकते हैं बताएं। ये तो मैं समझ सकता हूँ किताब जो है ये मैं पार कर लूँ, मतलब इसीलिए इस्कॉन के अंदर है कि इस्कॉन के रूल है, अनसेड रूल है, अपनी किताब, अपना पेन, अपना पेन ड्राइव, अपना सीडी, अपने जिगरी भक्त को भी शेयर नहीं करना, वापस नहीं आएगी, आएगी तो वैसी नहीं आएगी जैसी गई थी। ठीक है, तो ये तो समझ आती है, मगर ये तो वो तो सारा ओरल था। कई बार तो कहते हैं भाई सांस से निकली है भगवान के, और ये अभी जो चीज़ सांस से निकली है और जो मुंह से निकली है वो कैसे आप चुराते हैं? उनका एक स्वरूप होता है, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है, मतलब गलत ये बात आपने गलत नहीं बोली है कि वेद का एक स्वरूप है, वेद मूर्ति साक्षात वेद हैं, तो श्रुतियाँ हैं, ठीक है, या एक ये तरीका है इसको समझने का, गलत नहीं है, एक ये तरीका समझ। दूसरा जो मैंने फिर जो इस पर सर्क पाया, देखा इधर उधर सारा इसका ऊपर नीचे, तो ये दो अवतार इकट्ठे के बाद ऑल्टरनेट होते हैं। एक है उस असुर का नाम क्या था? हयग्रीव। अच्छा, उस असुर से किसने छुड़ाया? मत्स्य ने। और जगह पे आपको यही, जब आप हयग्रीव अवतार के बारे में पढ़ेंगे, भगवान के अवतार भी हयग्रीव, वो देखेंगे उस उन भगवान हयग्रीव का नाम इस असुर के वजह से पड़ा। वजह क्या थी कि कई जगह पे और ऑल्टरनेटिव है, और कुछ लोगों में जैसे मैं रेफरेंस दे देता हूँ, अपने अपने आप अपने तसली से देख लीजिएगा। ये अगर आप इसी में 24 अध्याय में 8वें में जाएंगे, 9वें में जाएंगे, 5वें स्कंद के 18वें के 6 में जाएंगे, और यहाँ पर इसमें आगे 57 में आएंगे, इसी अध्याय में आगे, तो सारा अगर आप इकट्ठा जोड़ेंगे तो पूरी स्टोरी निकल के आएगी। स्टोरी कुछ यूँ है, और इससे सीखने वाली बड़ी सारी चीज़ है कि अलग अलग तरीके से, एक है कि ब्रह्मा जी एक जगह बता रहे हैं, शुरू में बता रहे हैं 8वें हमें, कि जब उन्होंने देखा कि ये प्रलय का पानी चढ़ा, क्योंकि ये स्वयंभू मनु के टाइम की बात है ना, तो पहला मनवंतर, तो जब पानी चढ़ा तो चढ़ा हुआ था, जो पानी देख के जो है ब्रह्मा जी डर गए, उनके मुँह से भेद निकला और हयग्रीव जो चुरा के ले लो। एक वर्जन जोड़ते जाइएगा इनको, अलग अलग मत देखिएगा, तो कंबाइन करेंगे तो दूसरा, ब्रह्मा जी सोने वाले थे, तो जब सोने लगे थे उस टाइम पे जो है वो उठा के ले गए, चुरा के ले गए, ठीक हो गया। दूसरा वर्जन, तीसरा जगह पे है कि इसका नाम हयग्रीव भी है, एक जगह पे इसका नाम अज्ञान इस्तेमाल किया गया, इग्नोरेंस पर्सन इफेक्ट, और वहाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य भी दिए। तो सारा जोड़ के जो मेरे समझ में आया, ये इस तरीके से है, ये सिर्फ ब्रह्मा जी ऐसे नहीं कि चुरा के ले गए, जब व्यक्ति जो मेरे को समझ डर आलस निद्रा इन चीजों के वशीभूत होता है, ज्ञान निकल जाता है। आज तो आप अगर एक जगह बता पा रहे भी है पापा का, वो दे भी रहे इस तरीके से, मैं शुरू रेफरेंस लिखा हूँ, नहीं लिखा वही, आप 18वें अध्याय के 5वें स्कंद 18वें अध्याय 6ठा श्लोक, उसका अगर तात्पर्य देखेंगे तो वहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जबकि वेद है वो कभी ख़त्म नहीं होते, खिस्ता नहीं अमर, जैसे शाश्वत होता है, मगर फिर भी जैसे इस दुनिया में कई बार प्रकट होता है, प्रकट होता है इस तरीके से, तो प्रकट अप्रकट का मतलब भी यही है कि जब व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा अज्ञान में धंसा हुआ होता है, तो क्या जाहिर बात है अज्ञान में धंसने का क्या मतलब है, कौन सी चीज़ चली जाएगी, ज्ञान चला जाएगा, तो बड़ा कॉमन सेंसिकल चीज़ है। तो अब इसका एक पर्सनिफाइड लीला होती है, तो वो इस तरीके से होता है, तो कई बार वो फिर वो ज्ञान, अब वो क्यों, क्योंकि वो ज्ञान का स्रोत कौन है, कहाँ से ओरिजिनली ज्ञान कहाँ से है, विष्णु भगवान कृष्णा वट एवर, यस, सो देन ओरिजिनल सोर्स पर चला जाता है, फिर ओरिजिनल सोर्स से वो वापस दिया जाता है। जब ब्रह्मा जी फिर जब उसके बाद जगते हैं, फिर दोबारा तपस्या करते हैं, मांगते हैं भगवान से, तो फिर दोबारा वो ज्ञान वापस चले। इसका मतलब जो मेरे को समझ आया कि कोई जागीर नहीं है, वैदिक ज्ञान जो है ये किसी की जागीर नहीं है कि जी मेरे पास आ गई है, मेरे जेब में रहेगी, आप उसको कल्टिवेट करते रहेंगे, उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके साथ रहेगी। आप या तो डर के वजह से या आलस के वजह से निद्रा सारा कुछ उसको छोड़ देंगे, और अज्ञान के वजह से छोड़ के छूट जाएंगे। सो और वो ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसी है, एक आम आदमी के साथ भी ऐसी है और ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसी है। तो इसलिए उसके बाद जब वो निकल जाता है हाथ से, तो ब्रह्मा जी को दोबारा भगवान के पास जाना पड़ता है, दोबारा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान जाते हैं छुड़ा के लाते हैं उनको देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमन इसको टेकन फॉर ग्रांटेड कोई भी नहीं ले सकता। सो हयग्रीव का अवतार भी होता है, तो वो इस हयग्रीव को मारते हैं, वो उसका ये था कि वो हयग्रीव बनाता, तो उसने वर मांगा था दुर्गा देवी से कि भाई मेरे को अमर, वही सेम कहानी, अब हम अमर कर दो। फिर उसने बोला ये तो नहीं हो सकता, अच्छा क्या करो कि मेरे को कोई ऐसा बंदा मारे जो मेरे जैसा दिखता हो, जिसकी गर्दन जो है जो ये घोड़े जैसा होता है। तो फिर भगवान ने उस तरह का अवतार लिया, मारा ये। बट जो मुद्दे की बात जो ये है वो ये कि उसको ले जाना और किस सूरत हाल में वो निकल जाता है, चाहे ब्रह्मा जी उनके हाथ से भी, और क्या होता है जब वो वापस आता है। यू हैव टू बेग फॉर इट, ब्रह्मा जी को भी जो है भगवान से भीख मांगनी पड़ती कि ये मुझे जो है भगवान आप ज्ञान दें वेदों का, तो फिर भगवान देते। यानी कि घूम फिर के बाद वहीं आई, ओरिजिनल सोर्स है, देयरफॉर इज द ओरिजिनल गुरु, तो वहाँ से शुरू होती है कहानी। और दूसरा एक और चीज़ खत्म करने से पहले कि आप चुराया हुआ ज्ञान जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ज्ञान परंपरा से आया, वही ज्ञान वेद ब्रह्मा जी के पास था, उसने छीन लिया, जैसे मर्जी छीन लिया हयग्रीव ने, बचा नहीं सका, मारा गया। वही ज्ञान है वो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की परंपरा है, सारे परंपरा उसे आता है, आप जहाँ पहुँच जाते हैं ये सारा अभीष्ट सिद्धि था, वही ज्ञान वो चुरा के ले गया, भगवान के हाथों मारा गया। सो चुराया हुआ नॉलेज काम नहीं होता उस तरीके से, क्योंकि उसके पीछे का जो मकसद है वो इतना नोबल नहीं है। तो वो चीज़ फिगर आउट, बस यही है, यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई कहीं पर लगता है कि डिबेटेबल है? जी ऐसे ही समझे जैसे है। चुराया हुआ ज्ञान किसे कहते हैं? चुराया हुआ ज्ञान तो आपका नहीं है ना, तो उससे आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। मैं दो चार एग्जांपल दे देता हूँ आपको, शायद समझ, शायद आसान हो जाए। एक तो चुराया हुआ ज्ञान के इस ये हालत है, ठीक है, पहला एग्जांपल। एक एक अलव्य था, ठीक है, चुराया ज्ञान मरवा दिया उसको, ठीक है। एक कारण था, वो भी चुराने गया था, धोखा दे के लिया था, मारा गया। जितने भी एग्जाम्पल आप देख लो, अच्छा चलो ये क्लासिकल एग्जाम्पल्स, तो ये आप कह सकते हैं तो बहुत पहले होता था, आज क्या होते हैं, आज चुराया हुआ ज्ञान है। तो चुराया हुआ ज्ञान जो है आप देखेंगे, चुराया हुआ ज्ञान तो चुराया हुआ ही रहता है, वो नीचे ही रहता है हमेशा। हाँ तो क्या होता है चुराया हुआ ज्ञान है और क्या, फिर उससे होता क्या, उत्पात ही वह कल्पत है, उत्पात होता उस चुराए हुए ज्ञान से, क्या होता उत्पात होता। आप खोलने क्या कहते हैं, अगर आपने चुराया ज्ञान, चुराए हुए ज्ञान का जो है असर देखना है, तो आप कोई भी वेबसाइट्स पर चले जाएँ, स्पीकिंग ट्री खोल लें, आप क्या नाम है मेनली तो स्पीकिंग ट्री एक एग्जांपल दिया, आप यूट्यूब खोल लें चुराया हुआ ज्ञान, वह भागवत गीता के नाम पे, इसके नाम पे पता नहीं, जो जी में बोल रहे होते हैं, अपना भी सत्यानाश कर रहे होते हैं, तो सुनने वाले भी सत्यानाश कर रहे होते हैं, चुराए हुए ज्ञान से होते। जो भी आप एक चुराया हुआ ज्ञान का एक असर, रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म, धार्मिक कट्टरपंथी कहाँ से आती है? चुराए हुए ज्ञान से आती है, परंपरा से नहीं आती। वो ठेकेदार, चुराए हुए ज्ञान का मतलब क्या है, वो उस ज्ञान का ठेकेदार बन जाएगा, बनाया नहीं किसको उसने, किसी ने नहीं बनाया, वो खुद बन गया, सेल्फ अपॉइंटेड अथॉरिटी। तो ये चुराए हुए ज्ञान के होते हैं, चुराया हुआ ज्ञान, एक तो चुराया हुआ ज्ञान होगा तो चुराया हुआ ज्ञान में बाई डिफॉल्ट अधूरापन होगा, बाई डिफॉल्ट, क्योंकि वो ज्ञान के बॉडी को लाके दे सकता है, ज्ञान के इंटेंट को नहीं। ज्ञान ज्ञान यानी कि वो क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है, पर जो पर इन्फॉर्मेशन के पीछे मकसद क्या था, किस इन्फॉर्मेशन को किस लहजे में, किस तरीके से, किस मनोभाव के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वो नहीं देगा। तो वो एक अलग तरीके से पता नहीं किसी और तरफ ले जाएगी आपको, आप समझ रहे हैं। चुराया हुआ ज्ञान का मतलब है फिर वो या तो फिर या इस तरफ या फिर वो कागजी बातें होंगी। वो चुराया हुआ ज्ञान से कई बार वो शायरी अच्छी होती है उससे, उसके पीछे का नहीं, जैसे क्योंकि फिर वो टर्म्स जो हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे का जो एक जैसे कहते हैं ना कि ग्राउंडेड मतलब ज़मीनी हकीकत क्या है उससे लोग नावाकिफ रहते हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ जो हमारे यहाँ अक्सर इस्तेमाल होता है, और आप किसी भक्त से पूछेंगे इसका दरअसल मतलब क्या है तो दरअसल मतलब भी बता देगा, पर जो चुरा के ले जाएगा वो इसी में खुश होता रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक रोज़ इस्तेमाल करता हूँ भगवान के चरण कमल। अभी चरण कमल चीज़ क्या होती है मुझे बताएं, चरण का मतलब पता है ना सबके पास ही है, ठीक हो गया ना। अब चरण है कमल है, चरण कमल जैसा हो जाता है क्या होता है, भगवान के चरण कैसे हैं देखने में, हमारे जैसे ऐसे ही पांच उंगलियों वाला है कि कमल जैसे ऐसे फैला हुआ है, क्या है चरण कमल मुझे बताएं, ठीक हो गया। तो हाँ इसका लिटरल मीनिंग बताया ना क्या है चरण कमल। अब कमल होगा तो कमल तो आप ज़मीन पर रखोगे तो धस जाएगा घिस जाएगा पिस जाएगा, ठीक है। अब वही चरण कमल था, एक लात हमारी ऊपर छेद हो गया, गंगा नीचे उतर आई, ये कैसा कमल है, बात समझ आए। कमल का मतलब तो कमल, कमल का वो आप जो मतलब उसको जब आप ग्रामेटिकली वो कर तो वो दर्शाने के लिए कोमल, बेसिकली नरमी समझाने के लिए है ना, सॉफ्ट में समझाने के लिए, क्योंकि तो कौन सा चरण कमल है, ठीक है। ऐसे ही और चरण कमल को थोड़ा और आगे खींच लें, पद चिन्हों का अनुसरण करना, यानी कि पद चिन्हों पे चलना, तो भाई पद चिन्हों पे अब और आपका 9 नंबर का जूता है मेरा 7 नंबर का तो वैसे ही फिट नहीं बैठेगा उन महीनों में जिन महीनों में आप समझ रहे हैं, समझ आ रही ना। अब ये जो ले जाएगा इसको चुरा के मुझे ऐसा लिखा हुआ था उस बेचारे को क्या पता, चरण कमल का मतलब कुछ और होता, उसी तरीके से जैसे कि पद चिन्हों पे चलने का मतलब कुछ और होता, पद चिन्हों पे चलना पद चिन्हों पे नहीं चल रहा वो उसके, ये है एक जैसे कहते हैं ना सिविलाइज्ड लोगों का डायलॉग, सभ्य समाज जो होता है ना जिसमें तमीज होती है जिसके अंदर कल्चर होता है संस्कृति होती है उनकी जबान इस तरीके से, और जो होते हैं आदिवासी टाइप्स यानी कि कबीले टाइप्स यानी क्या इसको क्या कहते हैं लठमार बोली वाले उनके, आप जब आप ये जबान इस्तेमाल करोगे और विदाउट उसका जो क्योंकि वो परंपरा से आएगा तो बेचारा सिवाय कंफ्यूज होने का और क्या होगा उसके साथ, या तो कदम कदम पे ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको कि भगवान का यूं हो गया और ले लो और ले लो और ले लो कृपा बरस जाए, बेचारों को क्या पता कृपा क्या चीज़ होती है किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। वो तो बरस जाए वो कोई अभी क्या बरस जाए, वो कोई होने जाता आसमान से बरसेगा पानी क्या है, वो क्या बरस जाए, नीचे से भी तो आ सकती है जमीन से फाड़ के निकला है फिर ठीक हो गया, उनका कोई लेना देना नहीं है ना, ये सिविलाइज लोग का डायलॉग है। आपने कभी नोट किया है भागवतम में जब कोई नौकर भी बोल रहा होता है, बोल रहे हैं मान यमदूत बोल रहे हैं, यमदूत है वो परफेक्ट श्लोक बोल रहे हैं जिसका मीटर बेवजन श्लोक नहीं है, जैसा हम लोग कई बार शायरी कंपोज करते हैं तो एक 4 लाइन ऊपर होते हैं 15 लाइन 15 4 वर्ड ऊपर होते हैं 15 वर्ड पीछे होते हैं, उस तरह नहीं है वहाँ कोई वो नारा था वो दासी पुत्र था, दासी पुत्र क्या कहा था कि अनपढ़ जमाने गूठा छाप होता है, वो श्लोक बोल रहे हैं परफेक्ट, आपको कुछ समझ आ रही क्या है ये कैसे हो रहा है, या तो फिर आप बोले नहीं उसने ऐसे नहीं बोला था उसने ऐसे ही बोला था व्यासदेव ने श्लोक बना दिया उसको फिर दे एज इट इज़ नहीं आई, बात यूँ नहीं है वो एक पर्टिकुलर कल्चर की देन है, एक पर्टिकुलर कल्चर है जहां पर उनको बात करने की बाकायदा तमीज ही यही होती है, ये बहुत ही रॉ अंडरस्टैंडिंग होती है इस तरीके से बोल देना हाँ जी पानी ले आना, ये रॉ तरीका होता है उस कल्चर के कंपैरिजन में। तो जब इस कल्चर में पला बड़ा सांस लिया हुआ और आज से नहीं मान लीजिए 15-16-17 जनरेशन से पूरे डीएनए में क्या हुआ, जब उस कल्चर की लैंग्वेज सुनेगा तो कुछ वो इसी तरीके से होएगा उसके साथ, चरण कमल अब चरण कमल पद चिन्ह पे चलना है अब कोई बेचारा फर्श पे चल गया, माँ तो पच्चन पढ़ते नहीं, उसके लिए तो फिर आपको वो चाहिए, मिट्टी चाहिए जो भी नरम हो, तो उन मायनों में है ही नहीं चीज, इस वजह से कन्फ्यूजन। और वो जब आप वो परंपरा से नहीं होगी तो वो अच्छी अच्छी शायरी हो जाएगी, मगर पल्ले कुछ नहीं आएगा, ये वजह। ठीक है, टाइम आपका सवाल, एक टाइम ओवर हो चुका है, डिवोटीज जा सकते हैं प्रसाद के लिए, बाकी जो सवाल पूछना चाहते हैं सकते टाइम पास पूछ लेते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। भागवत।